Awakening with Brahma Kumaris.
Om Shanti. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत. माइंड मैटर्स इस श्रृंखला में इन दिनों हम बात कर रहे हैं बच्चों की. कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो समाज में जो कुछ हो रहा है उसी का आईना होता है. लेकिन कई बार समाज में जो कुछ हो रहा है अगर वो सही नहीं हमें लगता है तो हमें अपने जीवन को ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है, हमें ज्यादा अवेयर होने की जरूरत है. इन दिनों जो हम बात कर रहे हैं वो छोटे बच्चों से जुड़ी हुई कर रहे हैं कि कैसे उनके जीवन में कई बार कुछ घटता है जो आगे चलकर मेंटल हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम्स का भी रीजन हो सकता है. इन्हीं पर कुछ और बात करते हैं. हर बार की तरह आज भी हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी एंड वेल नोन साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर अवधेश शर्मा. आप दोनों का स्वागत. ओम
शांति.
डॉक्टर शर्मा, पिछली कड़ी में बात छोड़ी थी और इस कारण हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आई हैं कि एक बार अगर हमें अवेयरनेस हुई, हम चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे थे और वो एक्चुअली मैं सिर्फ सेक्सुअल अब्यूज पे ही ना करें, बुलिंग की भी बात है, या कई और सारे मुद्दे हैं जिसमें बच्चा इफेक्टेड हुआ है और पेरेंट के सामने बात आ गई है. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यू नो, बिकॉज पेरेंट पैनिक होता है और एक्चुअली उनको समझ ही नहीं आती कि कहां से मदद लें और कैसे उस बच्चे की हीलिंग करें.
ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें कि ज्यादातर पेरेंट्स किसी से बात नहीं कर पाते. कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ शेम रहती है उनके लिए भी और बच्चे के लिए भी. वैसे ज्यादातर बच्चे अगर उनको सेक्स के बारे में नहीं मालूम तो उनके लिए ये जो इवेंट है वो सिर्फ एक इवेंट होता है. जब वो इसके बारे में समझते हैं तो उन्हें पता लगता है कि एक्चुअली हुआ क्या. फिजिकल अब्यूज जो है उसमें उन्हें चोट लगती है. बुलिंग जो है उसमें उन्हें मानसिक चोट लगती है. दे फील स्लाइटेड, उनको ओप्रेस किया जाता है. तो तीनों में थोड़ा सा एक फर्क है. जहां तक रही बात सेक्सुअल अब्यूज की, सबसे जरूरी चीज होती है इस चीज को रिपीट होने से रोकना. दूसरी होती है कि बच्चे में उसके फ्यूचर को लेकर या ये महसूस करा के कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हुआ, उसका ध्यान इस पर ना खिंचवाना. ये ध्यान रखना कि ये फिर से कभी ना हो. ये ध्यान रखना कि बच्चा थोड़ा सा, स्पेशली अगर वही व्यक्ति है, क्योंकि अगर कोई जानने वाला है और उसको इससे आगे नहीं रोका गया, चाहे वो कोई परिवार का ही व्यक्ति हो, अगर उस चीज को छोड़ दिया गया तो वो चीज फिर से रिपीट हो सकती है. तो उसको फिर से ना रिपीट होने के लिए जरूर ध्यान रखना, इंक्लूडिंग कि अगर उस व्यक्ति से बात करने की जरूरत है, अगर उस व्यक्ति को वहां से हटाने की जरूरत है, वो सब करना. लेकिन बच्चे का बार बार ध्यान उस पर ना लाना. ज्यादातर बच्चे अगर कोई बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक अब्यूज नहीं हुआ है तो इस चीज को भूल जाते हैं. और समय के साथ साथ उनका इस पे ध्यान जाता नहीं है. लेकिन अगर मान लीजिए बहुत देर तक हुआ है या बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रूप से हुआ है या उसके बाद उनको ये डर लगता है कि शायद इसमें मेरी गलती निकाली जाएगी, या उनको लगता है कि उनकी वजह से पेरेंट्स को आघात हुआ है या पेरेंट्स हर्ट हुए हैं, तो वो इसको इंटरनलाइज कर लेते हैं और कई बार वो अपने आप को उसके कारण मानना शुरू कर लेते हैं. कुछ पेरेंट्स या बाहर वाले भी कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि ये तो तुम्हारी वजह से हुआ, या तुम्हें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था, या तुम पास गए ही क्यों, तुमने रोका क्यों नहीं, वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से कई बार बच्चे को लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत सिग्नल दिए या मैं इसका हिस्सेदार था. वो कभी नहीं होना चाहिए. प्लस कई बार हम उनका विश्वास नहीं करते, कई बार इसलिए भी क्योंकि जिस व्यक्ति ने अगर किया है, खासतौर पर अगर वो बाहर वाला नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये सही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बच्चे ने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया, वगैरह वगैरह. बच्चे आमतौर पर इस चीज के बारे में झूठ नहीं बोलते. तो एटलीस्ट उनकी बात को मान लेना और कह देना, यस इट इज समथिंग विच शुड हैव हैपेंड, हम इसका ध्यान रखेंगे, हम तुम्हारे साथ हैं, तुमने कोई गलती नहीं की है, हम तुम्हें जैसे हो वैसा एक्सेप्ट करते हैं, और आगे के लिए उनको एक सपोर्ट भी देना और साथ साथ उनके डर को कम भी करना और इस चीज को मुद्दा नहीं बनाना।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, कि कई बार पेरेंट्स इतना पैनिक क्रिएट कर लेते हैं और ये सोचते हैं कि इसके रिपरकशन इतने ज्यादा आगे बच्चे पर होंगे। सो यू नो लाइक आई वॉन्ट यू टू क्लैरिटी, मतलब यहाँ पे अगर हमारे सामने क्लैरिटी आए कि अगर बच्चा अवेयर ही नहीं है उस एक्ट के बारे में बेसिकली, तो उसके लिए ये कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आगे चलकर भी नहीं बनेगा।
अगर कभी कभार एक आधी बार हुआ है तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर एक लंबे अरसे तक चला है और उसकी वजह से बच्चा समझ नहीं पाता है कि उसको हैंडल कैसे करे, या उसकी वजह से मान लीजिए उसकी पढ़ाई में या उसके दूसरों से रिश्ते में फर्क आया है, या वो जब समझने लगा है उसके बाद भी ऐसा होता रहा है, उसके रिपरकशंस जरूर हो सकते हैं। और ऐसे समय में फिर पेरेंट्स को किसी काउंसलर से मदद लेने की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि ये बाद में जाके किसी और व्यक्ति के साथ ट्रस्ट बनाने में या रिलेशंस बनाने में बहुत बड़ा बाधक सिद्ध होता है। लेकिन वहां पर भी कई बार अगर हम उसके साथ रहते हैं, उससे कि इससे आपके जिंदगी में कोई खास फर्क नहीं पड़ना, और वैसे अगर देखा जाए तो जितना हम उसको याद करते हैं तो वो नेगेटिव मेमोरीज ज्यादा असर डालती हैं देन अ चांस एनकाउंटर, स्पेशली अगर कहीं बाहर कोई टचिंग हुई। ज्यादातर लोग भूल जाते हैं उस चीज को। फिजिकल अब्यूज जबकि वो वायलेंट होता है, और हर फिजिकल अब्यूज किसी ना किसी रूप में वायलेंट होता है, लेकिन अगर उसकी वजह से उस पर चोट के निशान है तो वो चोट जो है वो मन पे भी आती है। उसको कहीं ना कहीं ये फीलिंग कि वो वनरेबल है, कि उसके पास सपोर्ट सिस्टम्स नहीं है। कुछ बच्चे उसकी वजह से विड्रॉ कर जाते हैं, कुछ बच्चे उसकी वजह से और एग्रेसिव बन जाते हैं, खास तौर पे उन परिवारों में जहां पे कि पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा उसने तुझे किया तो तुम भी ज्यादा जाके करो, तो वो उसी आंकड़े में घूमने लग जाते हैं। लेकिन बुलिंग में भी एक चीज और देखी गई है कि जो बुलिंग करता है उसमें भी कहीं ना कहीं सेल्फ एस्टीम की कमी है, वो कहीं भी अपने आप को पूरक नहीं महसूस करता, इसके लिए वो दूसरे के ऊपर ऑपरेशन करता है ताकि वो कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कर सके। उन परिवारों में भी आमतौर पे किसी ना किसी तरह के डिसफंक्शन होते हैं, या बच्चे में चाहे थोड़े समय के लिए या लंबे समय से उसको ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, और अगर वो दूसरे को दबाएगा तभी वो अच्छा महसूस कर सकता है। तो इन सब में कुछ समय के लिए उसको सपोर्ट करना और उस माहौल को बदलना जहां पे कि वो पॉजिटिव रूप से अपने आप को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर सके, और जो जो उसमें गुण हैं उनको एक एक्सेप्टेबल, सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर के रूप में बिना दूसरे पे वॉयलेंस किए वो व्यक्त कर सके। और इसके लिए फिर स्कूल्स को भी, इसके लिए परिवारों को भी काम करना पड़ता है, और जितना जल्दी करेंगे उतना वो बिहेवियर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं वो अगर एडोलेसेंस में इस सब बैकलॉग के साथ, इस सब मानसिक स्थिति के साथ जाते हैं तो उनमें फिर अपने पेरेंट्स के साथ एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनना, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनना नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जब वो एक अब एडल्ट बनने वाले हैं तो वहां पे कुछ गलत बिहेवियर्स शुरू हो सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में उनको मुश्किल पैदा।
अब टाइम ये भी है तो आ रहा है कि हार्मोनल चेंज से भी गुजरने वाला है बच्चा। तो सर शिवानी, यहीं पर पेरेंट्स का जो इंटरवेंशन है, पता चला बच्चा की बुली है इस छोटी सी उम्र में, या कुछ ऐसा हुआ है, या फिजिकली अब्यूज हुआ है, पेरेंट्स पैनिक करते हैं, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली कि हील कैसे करना है, व्हाट शुड बी देयर रिएक्शन।
पेरेंट्स को बच्चे को हील करने से पहले अपने आप को हील करना है। जैसे डॉक्टर अवधेश ने कहा, उनको तो एक्चुअली पता ही नहीं है, बच्चे को अभी तक वो सिचुएशन की ग्रेविटी नहीं पता, शायद बाद में जाके समझ में आए अभी नहीं उतना, उसको सिर्फ ये पता है कि कुछ अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, यू नो समथिंग अनकंफर्टेबल. लेकिन पेरेंट्स के लिए वो सिचुएशन कई गुना ज्यादा, बच्चे से ज्यादा बड़ी है. तो पेरेंट्स ज्यादा दर्द में है या बच्चा ज्यादा दर्द में है? एक्चुअली राइट नाउ शायद पेरेंट ज्यादा दर्द में होगा. इफ इट्स जस्ट हैपेंड वंस एंड पेरेंट को पता चला, इट्स मोर ऑज अ शॉक फॉर द पेरेंट रादर देन फॉर द चाइल्ड. तो पेरेंट को बच्चे की हीलिंग करने का सबसे अच्छा तरीका पहले अपनी हीलिंग, कि अपनी एंग्जाइटी, अपना पैनिक, अपना डिसबिलीफ, अपना डिनायल मोड, या ये सोचना you know, अपने ऊपर भी गिल्ट कि मैंने ध्यान नहीं रखा बच्चे का. वी हैव टू अंडरस्टैंड हम 24/7 साथ में नहीं हो सकते हैं, नो पेरेंट कैन बी. तो अपने आप यू नो सेल्फ को कर्स करना, क्योंकि एक फिजिकल अब्यूज हुआ है, यू नो दिस इज अ फिजिकल पार्ट. इमोशनल अब्यूज जो चलेगा उसके बाद, विच इज दिस पेन, दिस गिल्ट, दिस हर्ट,
हम पे बहुत निर्भर करेगा.
ये हम पे भी और बच्चे पर ये इफेक्ट आएगा ना उसका. फिजिकल जैसे बताया, हुआ एंड गया, इट्स लाइक एन एपिसोड, हुआ एंड गया. लेकिन वो मेमोरी उतनी स्ट्रांग क्यों होती जाएगी? बिकॉज वी विल गो थ्रू दिस इमोशनल ट्रामा, और ये इमोशनल ट्रामा कुछ देर नहीं चलता ना, फिर कई दिन, फिर उसका कैरी फॉरवर्ड. तो लेट अस अंडरस्टैंड अगेन कि वो बात इतनी है, लगती है बहुत बड़ी है, लेकिन हम उसको सच्ची में छोटा कर सकते हैं, हम कहीं उसको बड़ा ना कर दें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें ये है कि ना बच्चे की गलती ना हमारी गलती. वाई शुड वी बी फीलिंग शेम्ड? वाई? हमने कुछ भी नहीं किया, बच्चे ने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया, हमने भी कुछ नहीं किया. इफ एनी वन हैज टू फील बैड, इट इज द पर्सन हु डिड इट, नॉट द पर्सन विद होम इट वॉज डन. तो उस बच्चे को फील नहीं करवाने की जरूरत है कि नहीं नहीं तुम बहुत अच्छे हो, वी लाइक यू द वे यू आर अकॉर्ड फॉर द चाइल्ड. तो तुमने कुछ किया ही नहीं है कि वी शुड लाइक यू आफ्टर दैट. तुमने तो कुछ भी नहीं किया है. सो दैट मैसेज हैज टू कम वेरी स्ट्रांग कि किसी और ने तुम्हारे साथ जो किया वो किसी और के, मतलब यू हैड नॉट इवन 1% इन दैट कि या नहीं हम फिर भी तुमसे प्यार करते हैं, तुम फिर भी अच्छे हो, तुम फिर भी ठीक हो. ये सारी थॉट्स और वर्ड्स एक्चुअली उसके अंदर वो क्रिएट करेगा कि अच्छा कुछ किया था क्या, या कुछ मेरे से हुआ है. सो वी हैव टू बी 100% कन्विंस्ड कि इसकी और हमारी कोई गलती नहीं थी. अब अगर वो व्यक्ति कोई फैमिली मेंबर है, क्रिटिकल तब होगा. वी विल हैव टू रिमेम्बर कि उस फैमिली मेंबर का ये संस्कार भी हो सकता है. यू नो, तो अगर हम सपोज वो एक एल्डर ब्रदर है, कोई ग्रैंड पेरेंट, ग्रैंड फादर भी हो सकते, इट वुड बी एनीबडी इन द हाउस, कोई कजिन है, अगर हम समझते हैं कि हम सिर्फ जाकर उसको एक बार बोल देंगे कि यू नो हमें पता चला है ऐसा आपने किया एंड आप आगे से ऐसे नहीं करना, इट मे नॉट नेसेसरली स्टॉप देयर. क्योंकि सामने वाले की भी तो वो एक
पूरी जर्नी है,
संस्कार है, पर्सनैलिटी है, वी डोंट नो. हमें लगता है कि हमने बोल दिया, अब इसके बाद वो नहीं करेगा, ये नहीं होने वाला है. वो शायद फिर ट्राई करेगा, और शायद वो घर में किसी और बच्चे के साथ भी. सो यू नो, ऐसे समय पे इज नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट सोशल प्रेशर्स कि परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, हाउ कैन वी टॉक अबाउट दिस ओपनली. एक्चुअली इट्स इम्पोर्टेंट कि एज अ फैमिली एवरीबडी शुड नाउ नो. इस बात को छुपाने की बजाय, क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी, सबको पता होना जरूरी है कि इस फैमिली मेंबर ने ऐसा किया है. एंड एवरीवन विल हैव टू टेक केयर ऑफ दैट फैमिली मेंबर. पहली बात, उनकी भी हीलिंग कराएं, चाहे उनको भी काउंसलर के पास जाने की जरूरत है, ताकि वो भी तो उस नेचर को अपने पर्सनालिटी के अंदर से निकाले. सिर्फ बोलने से थोड़ी कोई खत्म हो जाएगा. इट्स लाइक आपने गुस्सा किया एंड मैं बोलूं आप प्लीज अगली बार से नहीं करना, तो थोड़ी होने वाला है. आप कहेंगे हो गया, आ गया मेरे अंदर. हमें ये पता चला है इस इंसिडेंट से कि हमारे घर का कोई सदस्य बीमार है.
एक्चुअली या दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, उनके ऊपर तो
हीलिंग,
और उस पर तो हम सिर्फ इल्जाम लगा के हम छोड़ देते हैं.
तो हीलिंग उनकी, ताकि वो खुद भी व्यक्ति बचे, नहीं तो कल को उस व्यक्ति से कोई और बड़ी गलती हो जाएगी, वो व्यक्ति घर में या बाहर जाकर किसी और के साथ कर सकता है. तो लेट्स शिफ्ट आवर फोकस कि समबडी इज नॉट वेल, नॉट दैट समबडी इज बैड. ये नहीं कि वो बुरे हैं, वो गलत हैं, वो भी एक थोड़ी सी बीमारी है, और इस बीमारी का भी आई एम श्योर इलाज होगा, क्योंकि हर बीमारी का इलाज है.
आपके पास कोई आया जिसने कभी ये कहा हो कि आई इंडल्ज इन चाइल्ड अब्यूज?
जी,
پیپل آر اویئر اینڈ دے ورکنگ.
پیپل آر اویئر, اور کئی بار ایک امپلس ہوتی ہے جو کچھ لوگ سنبھال نہیں پاتے, اور ایسا بھی پایا گیا ہے کہ وہ ویکتی جو خود ابیوز کا شکار رہا ہو اپنے بچپن میں, اور اس سمے اس کو اس سے بہت ہین بھاونا آئی, وہ کہیں نہ کہیں ایک بیج بن سکتا ہے فیوچر میں اس ویکتی کا اپنی اس فیلنگ کو کم کرنے کے لیے ایسے ہی بیہیویئر میں جانے کا. ساتھ ہی ساتھ دو اور بڑی چیزیں میں سمجھتا ہوں اس سمے سماج میں ہو رہی ہیں جو کہ اس چیز کو بڑھاوا دیتی ہیں. ایک ہے پورنوگرافک مٹیریل جو آج کے سمے میں سیل فون پہ بھی انفارچونیٹلی اویلیبل ہے, اور دوسرا ہے کسی نہ کسی نشے میں اس ویکتی کا ہونا, اسپیشلی الکوہل,
کیونکہ آپ ہوش میں ہی نہیں ہیں.
تو اس سمے میں آپ کا اپنے پہ کنٹرول کم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ خاص طور پہ وہ ویکتی جو کسی اپنے کلوز بچے کے ساتھ اس طرح کا کچھ کرتے ہیں, وہ بھی اندر سے بہت گلٹ محسوس کرتے ہیں. ان کو بھی برا لگتا ہے, پر وہ اس سمے میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتے. اٹس لائک اے کمپلسیو بیہیویئر کہ وہ ایک آئی فیلنگ, اس فیلنگ کو پورا کیا, اس سمے ان کو لگا کہ ہاں کرنا چاہیے, اور اس کے بعد گلٹ محسوس ہوا. تو اس میں ان کو کس طرح سے اپنے آپ کو فزیکلی اس سچویشن سے دور رکھنا ہے. خاص طور پہ کئی بار یہ بھی سجیشن دی جاتی ہے انہیں کہ آپ کسی اور کو یہ بات بتا دیں تاکہ وہ کوشش کریں کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں, تاکہ آپ اس بچے کے ساتھ ایکسس نہ کر پائیں, اور اگر ہو سکے تو فزیکلی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دور کر دیا جائے. لیکن اگر یہ امپلسز کسی اور بچے کے ساتھ بھی آ رہی ہیں تو اس ویکتی کو پورنوگرافک مٹیریل, الکوہل یا دوسرے سبسٹنس ابیوز روک کر اور اپنے آپ کے اوپر لگاتار ود تھراپی کام کر کے سیکسوئل امپلسز کو کم کرنے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. کیونکہ آج کے سمے میں یہ صرف سوشل پرابلم نہیں ہے, یہ ایک لیگل ایشو بھی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ بہت بڑی کسی پرابلم میں بھی پڑ سکتے ہیں. تو ایک بات ضرور ہوئی ہے کہ کیونکہ تھوڑی سی اوپننیس اس بارے میں کچھ سالوں سے ہوئی ہے, تو جو پہلے چھپے روپ میں ہو جاتا تھا, اور جو ویکتی پیڑا سے گزر رہا ہے, چاہے وہ وکٹم ہے چاہے وہ پرپیٹریٹر ہے آف دی ہول تھنگ, وہ دونوں کسی سے بات ہی نہیں کر پاتے. تو اب کم سے کم یہ بات سامنے آنے کے کارن جو بچے ہیں جو کہ اڈولسنٹ میں اگر اسی روپ میں چلے جاتے ہیں, اور پھر اس کا کشٹ کئی بار پورے جیون ان کے ساتھ چلتا ہے, کسی سے شیئر نہیں کر پاتے, تو وہ چیزیں ضرور تھوڑی سی کم ہو رہی ہیں. نہیں تو اسی کے ساتھ پھر کئی اور چیزیں جڑ جاتی ہیں. کئی بار ایکسپریمنٹیشن ود سیکس ہے جو کہ ایڈولسنس میں کئی بار شروع ہو جاتا ہے, اس میں بھی اس چیز کا, یا اگر پیرنٹس کے ساتھ ان کا بہت اچھا ریلیشن شپ نہیں ہے تو پیرنٹس کو کئی بار پتہ ہی نہیں لگ پاتا, یا ایکسپریمنٹیشن ود الکوہل, ٹوبیکو یا دوسری ڈرگز ہیں ان بچوں میں جو کہ وہ بہت کسی کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے, یا ہین بھاوناؤں سے گزر رہے ہیں, یا ڈپریشن سے گزر رہے ہیں, یا اسکول میں کوپ اپ نہیں کر پا رہے, اس چیز سے گزر رہے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور کئی بار اپنے شریر کو ہی ایڈولسنس میں بچے نہیں سمجھ پاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ان میں یہ پرابلمز آنی شروع ہو جاتی ہیں اور پیرنٹس سے
کنٹرول لگ جاتے ہیں. یہی بات کہ ہارمونل چینجز کا جو یہ دور ہے, یہ سب سے آئی تھنک کہا جاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹائم آف اے ہیومن بینگ, کیونکہ بہت کچھ بدل رہا ہے. ایون سوشل سیٹنگز بدل رہی ہوتی ہیں, ہماری نئی جو بچہ ہے اس کے لیے نئی دنیا ہوتی ہے, اور اپنا شریر ہی ایک نئی دنیا کے روپ میں سامنے آ رہا ہوتا ہے, ایموشنلی ہینڈلنگ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے. ہاؤ امپورٹنٹ پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ یا پھر ایک تھرڈ انٹروینشن ضروری ہے, کیونکہ یہاں پر کون کون سی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ آ سکتے ہیں سامنے.
پیرنٹ چائلڈ بانڈنگ اگر بچپن سے ہو تو وہ اسموتھلی ایڈولیسنس میں جا سکتی ہے. کئی بار جب بچے ریبیل کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کہ ارے یہ تو عمر ہی ایسی ہے, ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے, یا کئی بار جب ہم ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو نکارا جاتا ہے, یا کچھ سچویشنز میں ان کے اوپر فورس کا استعمال کیا جاتا ہے دونوں پیرنٹس کے دوارا یا ایٹ لیسٹ ایک پیرنٹ کے دوارا. یہ سمے ہے جب کچھ خاص طرح کی مانسک سمسیائیں اسپیشلی بائی پولر ڈسارڈرز، ڈپریشنز، سکیزوفرینیاز یہ بھی شروع ہو سکتے ہیں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ وہ جتنا پہلے وڈرون تھا اتنا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں کی وہ بہت زیادہ اداس ہے، وہ کسی سے بات چیت ہی نہیں کر پا رہا، اسے کنفیوژن ہے، روز مرہ کے جیون کو سنبھالنا ہی اس کے لیے ایک طرح سے بوجھ ہے، یا فرینڈز بالکل ہی کٹ آف ہو گئے، یا سلیپ سائیکل بالکل ہی الگ ہو گیا، یا بھوک بالکل ہی کم ہو گئی، یا پڑھائی بہت ڈراپ ہو گئی، یا کچھ اب نارمل بیہیویئر ہو گئے، اسے کچھ ایسے ایکسپیرینسز ہوئے جو کسی اور کو نہیں ہوتے، اسپیشلی اس کو کبھی نہیں ہوئے، یا اس کو شک ہونے شروع ہو گئے، یا وہ وائلنٹ ہو گیا. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی کچھ خاص مینٹل پرابلمز کو درشاتی ہیں، اور وہ ایڈولیسنٹ کرائسس نہیں ہے. ایڈولیسنٹ کرائسس ویسے بھی کچھ دیر کے لیے کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ سچویشنز میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ ہر کسی کے ساتھ ہے یا نارمل سے زیادہ ہے یا اس بچے کے بیہیویئر سے بالکل الگ ہے، تو وہ پھر صرف ایڈولیسنٹ کرائسس نہیں ہے. اس کے لیے سیفیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کی مدد لیں، تاکہ وہ کھل کے ایڈولیسنٹ بھی بات کر سکے ان سے، کیونکہ شاید وہ ایز اے پیرنٹ آپ سے بات
نہیں کرنا چاہتے. شیوانی، یہاں ایک یو نو بینگ اے پیرنٹ اینڈ بیکمنگ اے پیرنٹ آف دس چائلڈ، یو نو جو کہ جس کو ہم نے ایڈولیسنٹ کرائسس ہی مان لیا اور مانا کہ یہ سب بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے میں تھرڈ انٹروینشن کی طرف جانے میں ہمیں گھبراہٹ اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کو کیسے لینا چاہیے؟ بیکاز ابھی بھی 90% آف دا پیرنٹس دکھ بھی رہا ہے تب بھی وہاں نہیں جائیں گے، اسکول کاؤنسلر تک جا سکتے ہیں، اس کے آگے نہیں جانا چاہتے.
وہ تھرڈ انٹروینشن صرف ایک ڈاکٹر ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، ہم بچپن سے ڈاکٹر کے پاس، بچہ پیدا ہوا ڈاکٹر کے پاس، ہر ٹیکا لگا ڈاکٹر کے پاس، ہر چیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس، تو تب تو ہم نے نہیں سوچا، بیکاز وی نو کہ ڈاکٹر وہ کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں. آج ایک زکام بخار بھی ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس، ہم اپنے آپ کے ساتھ پھر ایکسپیریمنٹ کر لیں گے کہ ایک کروسن کھا لو، ایک اتنا سا، بچے کے ساتھ کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کرتا ہے، تھوڑا سا بھی کچھ لگا ہم کہیں گے ڈاکٹر کے پاس، بیکاز سیفٹی اینڈ پروٹیکشن از آر کنسرن. تو یہ بھی جو ایشو ہے، ایون اف بچہ ہمارے سے ساری بات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بٹ وی ڈونٹ ہیو دی ایکسپرٹیز، ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز ہی نہیں ہے کہ ہم سگنلز کو کیچ کر سکیں، ہمارے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے کہ اگر ہمیں لگا ہے کچھ تو ہم آگے اس کو کیسے گائیڈ کرنا ہے. سو اٹس جسٹ ون تھاٹ ایکچولی کہ ہم صرف ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. وہ سٹگما جو سنا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، دوسرے لوگ کیا بولیں گے، پھر پتہ کتنا دور کا ہم سوچ لیتے ہیں، اس کے کریئر میں تو نہیں پرابلم آئے گی کہ ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے تھے، اس کی شادی میں تو نہیں پرابلم آئے گی کہ ہم سائیکائٹرسٹ کے پاس گئے تھے، اتنا سب سوچ کے، مطلب اس میں بھی انٹینشن اچھی ہے کہ اس کے اچھے کے لیے سوچ رہے ہیں، لیکن آج اس سچویشن کو نہیں ایڈریس کر رہے. تو وی شوڈ اونلی نیڈ ٹو ٹیل آر سیلف آئی ایم اونلی گوئنگ ٹو اے ڈاکٹر، اینڈ بھلے اس کے لیے دنیا کچھ بھی کہے، لیکن میرے بچے کی ہیلتھ سے زیادہ امپورٹنٹ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ از گو میٹ اینڈ رول آؤٹ کہ ہاں کچھ نہیں ہے، یا کچھ تھوڑی سی بات وہ ڈاکٹر ہمیں بتا دے گا کہ آپ یہ دھیان رکھو، لیکن اس سٹگما سے ہمیں، ایکچولی وہ صرف سٹگما ہمیں روک رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، کہ
اس کو اگر ہم ہٹا پائیں تو ہم کتنی بڑی مشکل سے باہر آ سکتے ہیں،
اور ہماری وہ پرابلم نہیں تو کتنا بڑھ جائے گی. ہم نمت بن جائیں گے اپنے بچے کے ایموشنل درد کو بڑھانے کے لیے، ہم نمت بن جائیں گے کہ آج جو بیماری بھی اگر ہے وہ اتنی ہے، لیکن صرف ہمارے ڈر کی وجہ سے کہ ہم لے کے نہیں گئے ڈاکٹر کے پاس، وہ کس لیول تک پہنچ جائے گی؟ اس کے انسٹرومنٹ تو ہم بن جائیں گے نا، اپنے بچے کے لیے پیار ہے لیکن کیئر ٹھیک سے نہیں کی. سو یہ سٹگما کو ہمیں توڑنا ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین دیر از سم تھنگ رانگ ود مائی چائلڈ. یو نو ایکچولی دنیا میں یا ہندی موویز کو دیکھ کر یا کچھ، पागल है, मेरा बच्चा कोई पागल थोड़ी है. अच्छा फिर हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन पढ़ाई में तो अच्छा है, लेकिन उस दिन उसने ये भी अच्छा, नहीं नहीं वो बिल्कुल ठीक है, यू नो. सो यू आर काइंड ऑफ ट्राइंग टू टेल योर सेल्फ कि नहीं 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 एवरीथिंग इज फाइन, क्योंकि हमने सोचा जाना मीन्स कि वो पागल है डॉक्टर, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट एक्चुअली पहले हम समझते थे कि पागल लोगों का डॉक्टर. एंड जो मूवी में विजुअल्स भी हमें दिखाए जाते हैं कि उसको शॉक दिया जाता है, उसको कुछ बांधा जाता है, तो हम बहुत दूर का सोच लेते हैं. एक छोटी सी चीज को, वो जो इन्फॉर्मेशन अंदर गई हुई है उसकी वजह से इतना बड़ा क्रिएट करके हम वो छोटी बात को छोटे पे नहीं रोक पाते. सो लेट्स ऑलवेज रिमेम्बर जस्ट अनदर डॉक्टर. आज तक हम अपनी हर बात के लिए एक डॉक्टर के पास गए, जस्ट अनदर डॉक्टर, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद माय चाइल्ड. यू नो कि उसको वो अब नॉर्मल नहीं है, पागल नहीं है, कुछ भी नहीं है, छोटी सी चीज जल्दी में ठीक हो जाएगी.
और एक्चुअली डॉक्टर के पास जाना मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम है.
ज्यादातर अगर आप जल्द जो इश्यू है उसको सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो इस समय के इश्यूज थोड़े से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक तरह का ब्रिज बन सकता है कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दोनों के बीच, पेरेंट्स और बच्चों के बीच, एडोलेसेंट के बीच, और बात वहीं पे खत्म हो जाती है. लेकिन अगर वो चीज चलती रहती है, सिम्टम्स बढ़ते रहते हैं, तो फिर वो आगे जाके एडोलेसेंट के बाद एडल्टहुड में भी प्रॉब्लम्स सामने आ सकती है.
डॉक्टर अवधेश शर्मा से शिवानी, थैंक यू सो मच आज की इस बातचीत के लिए. हमने पूरे सारे एज ग्रुप्स में देखा है कि किस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं बच्चे में. अर्ली इंटरवेंशंस आर इम्पोर्टेंट. तो आगे हम जो है मुद्दों पर जाएंगे, प्रॉब्लम्स पर जाएंगे, पर आज की बातचीत के लिए थैंक यू सो मच. ओम शांति.
चिल्ड्रन हु फेस सेक्सुअल अब्यूज नीड पेरेंटल सपोर्ट टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट. Help the child to forget about it by not discussing it too much. Parents should trust the child even if the abuser is a close family member. A child will not lie about an experience of abuse. Parents should not create fear in the child and help the child to trust people. A person who indulges in sexual abuse needs healing. They need to keep away from alcohol and pornography because these stimulants will increase their chance of indulging in it again. Therapy, spiritual practices, and meditation can help the person come out of this habit. A child who bullies others lacks self-esteem. He oppresses other children to feel good about himself. It gives him a false sense of power and self-worth. The child needs healing at home and made to feel good about himself by focusing on his qualities and accepting him.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999559660. Om Shanti Om.